नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से उत्पत्ति नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं ये मधुर संगीत रचना।
हे प्रभु यीशु, तुमको प्रणाम, गाते हैं हम वंदन गान।
हे प्रभु यीशु, तुमको प्रणाम, गाते हैं हम वंदन गान।
सुबह तिहारे सन्मुख आए, शीश
नायक तुम ही तो अधिनायक।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब प्रभु की दया से कुशल पूर्वक होंगे और आज फिर से प्रभु के जीवित वचनों में से सीखने के लिए तैयार होंगे। मित्रों, यह परमेश्वर का वचन ही है जो हमें सत्य में जीवन और परमेश्वर के भय में बढ़ाना सिखाता है। परमेश्वर का वचन जीवित और सच्चा है जो हमारे प्रतिदिन के जीवन के लिए लाभप्रद है। वह हमें हानि नहीं परंतु लाभ ही पहुंचाता है, हमारे दुख में या बीमारी में सांत्वना देता है। इसलिए आप इस कार्यक्रम को अवश्य सुनते रहें और अपने मित्रों को भी इसे सुनने के लिए उत्साहित करें ताकि वे भी परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन व परिवार में पा सकें। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगें। हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस कार्यक्रम के लिए जिसके द्वारा हम आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकते हैं और आपकी संगति व विश्वास में बढ़ सकते हैं। आज हम जो कुछ सीखते हैं प्रभु जी, आज आप हमारी सहायता करें। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं हमारे उन श्रोता मित्रों के लिए जो किसी प्रकार की बीमारी से दुखी व निराश हैं। प्रभु जी, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप उनके पापों को क्षमा कर दें और उन्हें पूर्ण रीति से चंगा कर दें ताकि वे आपकी महिमा कर सकें। आज हमारे सभी श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि सब आपके वचन से आशीष को प्राप्त करें। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, पिछले अध्ययन में हम उत्पत्ति की पुस्तक के 35 अध्याय से अध्ययन कर रहे थे जिसमें हमने याकूब का बेतेल को लौटना, परमेश्वर द्वारा वाचा का नवीनीकरण करना, राहेल की मृत्यु और विन्यामन का जन्म, याकूब के पुत्रों का नाम और इसहाक की मृत्यु को देखा था और इसी के साथ 35 अध्याय भी समाप्त हो गया। आज हम अपने अध्ययन को उत्पत्ति की पुस्तक उसके 36 अध्याय से आरंभ करेंगे। मित्रों, यह अध्याय पूर्णतः एसाव के परिवार के बारे में बताता है जिससे एदोम देश बना। मित्रों, हो सकता है कि यह अध्ययन उन लोगों को ज्यादा मजेदार न लगे जो अच्छे पढ़ाकू या पढ़ने वाले हैं, परंतु यह उन लोगों के लिए एक अद्भुत अध्ययन है जो उन लोगों के नाम और कौन किससे उत्पन्न हुआ आदि विषयों पर ध्यान देते हैं या जानना चाहते हैं। आप पाएंगे कि कुछ नाम जो यहाँ पर लिए गए हैं वे अरब देश के लोगों में आज भी पाए जाते हैं, जैसे उमार जो एक तंबू बनाने वाला था और वहां रहता था, तेमान और सपो और कन्नज और कोरह आदि के नाम आज भी अरब देशों में पाए जाते हैं। यहाँ पर एसाव का परिवार है और वे आज भी उसी क्षेत्र में रहते हैं। मित्रों, एसाव का परिवार एदोम देश में बस गया जो मृत सागर के दक्षिण की ओर और मृत सागर के पूर्व दिशा में है। यह पहाड़ी इलाका है और एदोम की राजधानी है पेट्रा, जिसे चट्टानों को चीर कर बनाया गया है और आज भी स्थिर है। मित्रों, एदोम के विषय में यशाया की पुस्तक, यर्मिया, यजकेल और ओबद्या की पुस्तक में लिखी गई है और वो बहुत ही असाधारण रूप से लिखी गई है जो पूरी हो चुकी है। मित्रों, हम इस बात को याद रखें कि एदोम देश एसाव से आया या बना है। इस अध्याय में 3 बार यह स्पष्ट किया गया है कि एदोम का पिता एसाव है। वास्तव में इसके नाम समानार्थक हैं, अर्थात एक जैसे हैं। उदाहरण के तौर पर पद 8 में हम देख सकते हैं। अब देखना यह है कि एसाव और एदोम में क्या अंतर है, यह एक अच्छा प्रश्न है। मित्रों, जब हम पहले एसाव से मिले थे तब हमने उसे इसहाक के परिवार में एक लड़की की तरह देखा था, वह जो हमेशा घर से बाहर रहने वाला, तगड़ा और एक अच्छे दिखने वाले खिलाड़ी के जैसे था। मित्रों, बाहरी रूप से वह आकर्षक था, परंतु यदि कभी कोई व्यक्ति हुआ जो सांसारिक था तो वह व्यक्ति एसाव ही था। मित्रों, कई वर्ष पूर्व एक मसीह युवती प्रभु के सेवक के पास आई और उनसे एक सुंदर युवक के बारे में बातचीत की जिससे वह एक बार मिली थी। यदि सच कहा जाए तो दोनों ही युवक युवती सुंदर दिखने वालों में से थे। वह चीन देश में पैदा हुई थी और उसका पिता तेल का व्यापारी था जिस कारण से वह बहुत धनी थी। वह उस नौजवान से बैंक में मिली जो वहां पर एक क्लर्क के रूप में कार्यरत था और गरीब भी था। मैं जानता हूं कि बैंक में काम करने वाले बहुत से क्लर्क जो शादीशुदा नहीं हैं, वे अपना जीवन साथी पाने के लिए अपने बैंक के ग्राहकों को, जिनके पास बैंक में पैसा अधिक है, उनकी बेटियों को भी देखते हैं। और इसी तरीके से यह जवान इस लड़की से भी मिला। वह सुंदर, आकर्षक और हिष्टपुष्ट था और मेरे लिए तो वह एसाव की तरह लग रहा था। मित्रों, यह युवती एक अच्छी मसीही विश्वासी थी। उसने प्रभु को एक सेवक के द्वारा चीन में ग्रहण किया था। वह इस जवान से शादी करना चाहती थी यह सोचते हुए कि यह जवान भी मसीह को ग्रहण करेगा, परंतु दास ने उस जवान से बातचीत की और पाया कि उसे मसीह को ग्रहण करने का कोई विचार नहीं है, परंतु वह उस लड़की से शादी करना चाहता था। वह लड़की सुंदर और पैसे वाली थी और यह जवान संसारिक था। तब प्रभु के दास ने उनसे कहा कि वह उनका विवाह विधि संपन्न नहीं कर सकता है। तब वह युवती यह सुनकर उससे भड़क गई, परंतु कुछ 6 महीने बीतने के बाद उस सेवक के पास यह बताने के लिए वापस आई कि उसका तलाक हो गया है। उसने उसे बताया कि उसने पहले कभी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा या जाना था जिसने अपने आप को पूर्ण रूप से संसार के लिए दे दिया है, अर्थात पूर्ण रूप से भौतिक और शारीरिक अभिलाषाओं से जकड़ा हुआ है। वह आगे बोली, मैं कभी भी ऐसा नहीं सोची थी कि ऐसे भी कोई व्यक्ति इस संसार में होगा जो अपने पूरे जीवन भर एक उच्च प्रभावशाली आत्मिक और अद्भुत विचार न अपनाए, वैसा बनना नहीं चाहिए। उसने कहा कि वह जवान बहुत ही असभ्य और कठोर था, शायद ही कोई उसके जैसा होगा। जब वे एक दूसरे को जानने का प्रयत्न कर रहे थे तो यह व्यक्ति ऊपरी तौर से बहुत अच्छा व्यवहार करता था जो दिखावा था, परंतु अंदर से वह असभ्य और कठोर था। मित्रों, यही स्वभाव एसाव का भी था। यदि आप में से कोई सुंदर युवती एसाव के समय में होती और उससे देखती तो उसके परिवार में, तो शायद आप उससे मिलना चाहती कि कुछ बात कर ले, जैसे कि आजकल कुछ युवतियां कर लेती हैं जब किसी सुंदर युवक को देखती हैं तब। मित्रों, एसाव एक आकर्षक दिखने वाला जवान था, परंतु वह सांसारिक या भौतिक था, जो भौतिक वस्तुओं के पीछे चलने वाला था। मित्रों, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग परमेश्वर से तर्क करेंगे कि याकूब और एसाव के चुनाव के बारे में, एसाव बाहरी रूप से बहुत आकर्षक और सुंदर दिखता था, तो क्या परमेश्वर ने कोई गलती की थी? मित्रों, हम एक छोटे भविष्यवक्ता की पुस्तक ओबद्याह में एसाव के असली रूप को देखते हैं कि एक छोटा एसाव एक लगभग 100,000 एदोमी बन गया और उनमें से प्रत्येक जन एक छोटा एसाव है। मित्रों, अब उस राष्ट्र पर एक दृष्टि डालें और आप देखेंगे कि एसाव से क्या निकल कर आया है। मित्रों, यह तो एसाव को एक सूक्ष्मदर्शक यंत्र के नीचे रखने के समान है जो उसमें से देखने पर बहुत बड़ा या फैला हुआ दिखता है, जैसे कि एसाव अब है। हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि एक राष्ट्र जो घमंड से भरा हुआ है, और परमेश्वर ने एदोम से कहा। हम ओबद्याह की पुस्तक 1:3-4 को पढ़ते हैं। हे पहाड़ों की दरारों में, हाँ ऊंचे निवास स्थान में रहने वाले, तेरे मन के घमंड ने तुझे धोखा दिया है। तूने मन में कहा है, कौन मुझे भूमि पर उतार सकेगा? चाहे तू उकाब के समान ऊंचे पर घर बनाए, चाहे तारागण के मध्य अपना घोंसला बनाए, वहां से भी मैं तुझे भूमि पर गिरा दूंगा, यहोवा की यही वाणी है। मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि उनके हृदय का घमंड एक स्वाधीनता की घोषणा कर रहा था। आत्मा यह कह रहा था कि वह बिना परमेश्वर के भी जी सकता है और उसे परमेश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है। मित्रों, यही एसाव है। पुराने नियम की आखिरी पुस्तक मलाकी में परमेश्वर कहते हैं, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु मैंने एसाव से बैर रखा। जब यह लोग इस पृथ्वी पर थे उनके पश्चात 9,000 से भी और अधिक वर्ष तक परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा था, परंतु परमेश्वर एसाव के हृदय के विचारों को आरंभ से ही जानते थे। इसके इतिहास में जमा हो गए जो इसके बाद इतिहास में जमा हो गए। यह स्पष्ट है कि परमेश्वर ने जो कहा था वो बिल्कुल सही था। मित्रों, अब हम आगे देखते हैं कि एसाव कनान से सेई पर्वत को जाता है। तो आइए हम उत्पत्ति 36:1 को पढ़ें। यहां पर लिखा है, अब एसाव अर्थात एदोम की यह वंशावली है। मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि फिर से बताया गया है कि एसाव एदोम है। उत्पत्ति 36:2-3 में भी लिखा है, एसाव ने कनानी स्त्रियां ब्याह ली, अर्थात हित्ती एलोन की बेटी आदा और अना की बेटी हिवी, सिवोन की नातिन ओहलीमाबा, फिर उसने इस्माइल की बेटी बासमत को ब्याह लिया जो नबायोत की बहन थी। मित्रों, आपको याद होगा कि एसाव ने पहले ही 2 कनानी स्त्रियां ब्याह ली थी, फिर वह इस्माइल की बेटी से भी ब्याह करता है। आगे हम उत्पत्ति 36:6-7 में पढ़ते हैं, एसाव ने अपनी पत्नियों, अपने पुत्रों, अपनी पुत्रियों, अपने घर के सब प्राणियों, अपने पशुओं, अपने सब चौपायों और अपने सब सामान को साथ लिया जो उसने कनान देश में एकत्र किया था, और वह अपने भाई याकूब के पास से दूसरे देश को चला गया। उनकी संपत्ति इतनी अधिक हो गई थी कि वे इकट्ठे न रह सके, और जिस देश में वे परदेशी होकर रहते थे वहां वे अपने पशुओं की बहुतायात के कारण साथ साथ न रह सके। मित्रों, आपको भी याद होगा कि एक बार इब्राहिम और लूत की स्थिति भी ऐसी ही थी। उनके लिए चारागाह की भूमि कम पड़ गई थी। उनके प्रत्येक के पास बहुत सारी भेड़ बकरियां थी। वे अलग हो गए और अब एसाव प्रतिज्ञा के देश को छोड़ता है, वह स्वयं छोड़ देता है उनकी आर्थिक आय की अधिकता की समस्या के कारण से। हम आगे देखते हैं कि एसाव सेईर पर्वत पर बस जाता है। उत्पत्ति 36 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, एसाव पहाड़ी देश सेईर में रहने लगा। एसाव एदाउम भी कहलाता है। अब हम देखते हैं कि एसाव कनान के सेईर नामक स्थान में बसने के लिए जाता है। याकूब जब पदन आराम से लौट रहा था तब वह वहां रहता था। उत्पत्ति 32 अध्याय उसके 3 पद में हम इसे देख सकते हैं। सेईर पर्वत के बारे में हम पहले ही देख चुके हैं। फिर आगे हम एसाव की वंशावली को पाते हैं जो उत्पत्ति की पुस्तक उसके 36 अध्याय उसके 12 पद में है। और एसाव के पुत्र एलीपेज की तिमना नाम एक रखेल थी जिसने एलीपेज के द्वारा अमालेक को जन्म दिया। एसाव की पत्नी आदा के ये ही पुत्र थे। मित्रों, यह अमालेकियों का आरंभ है। कई शताब्दियों से रह रहे उन जातियों को जो निर्जन प्रदेश के कई इलाकों में भेज दिए गए हैं। कई लोगों को उत्तरी अफ्रीका में खदेड़ दिया गया है। मित्र, सभी अरबी जाति के लोग इब्राहिम से आए हैं। हाजिरा के माध्यम से जो एक मिस्र थी और कतूरा से जिसे इब्राहिम ने सारा की मृत्यु के बाद विवाह किया था। और हम देखते हैं कि यहाँ पर अंतर जातीय विवाह किया गया। एक जाति से दूसरी जाति के बीच में विवाह किया गया है। वे एक ही परिवार के सदस्य थे जिसमें से इसराइली थे, दूसरे भी उसी परिवार से थे। मित्रों, मुझे एक बार मेरे एक मित्र ने बताया कि वह एक अरबी से मध्यपुर देश में मिला था तो उसने एक कथन के द्वारा अपनी शत्रुता प्रकट की थी। मित्रों, मेरे मित्र ने एक संदेश इसराइल देश के बारे में बनाया अर्थात तैयार किया था जिसे उसने अपने पर्यटन समूह में दिया था। और यद्यपि यह अरबी एक मसीही था, उसने मेरे मित्र से कहा वह इसराइल देश से कितना अधिक घृणा करता था। मित्र ने उससे कहा, परंतु वह तो आपका भाई है, मुझ पर विश्वास कीजिए। मेरे ऐसे कहते ही वह आग बबूला हो गया। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मेरे साथ उसका कोई भी रिश्ता नहीं है। बस मैंने कहा, आपका रिश्ता है। मित्र ने कहा, आप तो दोनों ही शामी लोग हैं, आप भी उतने ही हैं जितने वो हैं। मित्रों, अंत में उसे सच्चाई को स्वीकार करना ही पड़ा। इसलिए यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इस संबंधों को बताता है। परमेश्वर का आत्मा हमें इसके विषय में बताने के लिए कुछ बातें हमारे सामने रखता है। हम इस अध्याय में कुछ मजाक या हंसी की बातें भी पाते हैं। उत्पत्ति 36 अध्याय के 15 पद में लिखा है, एसाव वंशियों के मुखिये ये हैं। एसाव के पहले उठे पुत्र एलीपेज के वंश में तेमान मुखिया, उमार मुखिया, सपो मुखिया, कनाज मुखिया। मित्रों, अब प्रश्न यह है कि उनको यह मुखिया कहाँ से मिले। यहाँ पर कुलीन वर्ग का आरंभ होता है। उन्होंने बस इन शीर्षकों का अनुमान लगाया और प्रत्येक मुखिया बन गया। मित्रों, यह सिर्फ कोई उपनाम नहीं थे, उसके द्वारा वे उनका अपना मतलब पूरा करते थे। एसाव के परिवार में कुलीन वर्ग अर्थात उच्च वर्ग था। हम उत्पत्ति की पुस्तक 36 अध्याय उसके 19 पद में आगे पढ़ते हैं, एसाव अर्थात एदोम के पुत्र ये ही हैं और उनके मुखिये ये ही हैं। मित्रों, अब हम यहाँ देखते हैं कि अब उनके परिवार में मुखिये हैं। हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने वंश का मूल खोजते पाते हैं और वह राजस्व परिवार से हैं। यह मुझे आश्चर्यचकित करता है कि यदि कोई यूरोप या एशिया से आया है जिसने दाग की बारी में काम किया और मिट्टी के बर्तन बनाए, जूतों की दुकानें चलाई, वे लोग भी अपने आप को राजसी घराने के बताते हैं। ऐसा लगता है कि मानो सब लोग उच्च कुलीन वर्ग से आए हैं। मित्रों, एसाव ने कुछ लोगों को बदल दिया। वास्तव में उसने मुखिया बनाने से भी बढ़कर आगे कदम बढ़ाया। हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 36 अध्याय के 31 पद में पढ़ते हैं जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर इसराइलियों पर किसी राजा के राज्य करने से पहले एदोम के देश में इन राजाओं ने राज्य किया। मित्रों, हम देखते हैं कि मनुष्यों के ऊपर राजा ठहराने की योजना परमेश्वर की नहीं थी, परंतु यह एदोमियों की जीवनचर्या बन गई। उनके ऊपर मुखिया और राजा हुआ करते थे। यदि आप भी एसाव के परिवार से होते तो आपको भी एक शीर्षक की आवश्यकता होती क्योंकि वे इसी प्रकार के लोग थे। यहाँ एक मजेदार बात ध्यान देने वाली है कि इससे पहले कि इसराइल के पास राजा होता, एसाव के लोगों के पास राजा था। वास्तव में इसराइली लोग बाद में आकर शामुएल से कहते हैं, जिसे हम पहला शामुएल 8 अध्याय उसके 5 पद में पढ़ते हैं, और उन्होंने उससे कहा, देख तू तो बूढ़ा हो गया है और तेरे पुत्र तेरे मार्गों पर नहीं चलते, इसलिए अब सब जातियों के समान हमारा न्याय करने के लिए हमारे लिए भी एक राजा नियुक्त कर। मित्रों, वे इस प्रकार से कह सकते थे कि हमारे भाइयों के पास नीचे दक्षिण में एदोमियों के पास राजा हैं, हम भी चाहते हैं कि उनके जैसे हमारे लिए भी राजा हो। हम उत्पत्ति की पुस्तक 36 अध्याय उसके 40 से 43 पद में आगे पढ़ते हैं, एसाव वंशियों के मुखियों के कुलों और स्थानों के अनुसार उनके नाम ये हैं, तिमना मुखिया, अल्बा मुखिया, यतेत मुखिया, ओहोलिबाबा मुखिया, इला मुखिया, पिनोन मुखिया, कनज मुखिया, तिमान मुखिया, मिपसार मुखिया, मगदियल मुखिया, इराम मुखिया। एदोम वंशियों ने जो देश अपना कर लिया था उसमें उनकी अधिपति ये ही हैं। एदोम वंशियों का मूल पिता एसाव है। मित्रों, यह उस परिवार के वंश का इतिहास है जिसे स्वीकार नहीं किया गया, अर्थात तिरस्कार कर दिया गया। जब यह अध्याय अपना अंतिम सारांश देता है तब फिर से यह मुखिया की सूची को दोहराता है जो एसाव के वंश से आई है। मित्रों, मैं समझता हूँ कि जब कभी भी वे एक साथ आए या एक दूसरे से मिले तो उनमें बहुत बार एक दूसरे के आगे झुकना या एक दूसरे की कमियों को निकालने का आदान प्रदान हुआ होगा। उदाहरण के तौर पर, जैसे मैं चाहता हूँ कि आप मेरे भाई से मिले, वह मुखिया अल्बा है, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे मित्र से भी मिले, यह मुखिया तिमान है, और ये राजा हैं। मित्रों, मुझे संदेह होता है यदि आप वहाँ उनमें होते और उन्हें देख पाते तो कितना अच्छा होता। वास्तव में यह अध्याय मानव शास्त्रियों या मानव जाति विज्ञान के अध्ययन करने वालों के लिए बहुत ही रुचिदायक है जो इस विषय पर रुचि रखते हैं। इस प्रकार के अध्याय हमें पारिवारिक इतिहास बताते हैं जो संभवतः इतना पीछे ले जाता है कि शायद ही कोई दूसरा उद्गम या साधन हमें उतना पीछे ले जा सकता है। तो इस प्रकार से यह अध्याय मुखियाओं की सूची के साथ समाप्त होता है और याद दिलाता है कि उनका वंश या उत्तराधिकारी उनके अधिकृत क्षेत्र में आज भी हैं, अर्थात वह जो एदोम कहलाता है एदोम एसाव ही है जो एदोमियों का पिता है। हम इसके आगे की क्रिया या कार्यप्रणाली को उपाध्याय की भविष्यवाणी में और मलाकी की पुस्तक में देखते हैं। मित्रों, यह हमारे लिए ध्यान देने योग्य बात है, हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़कर पार हो सकते हैं क्योंकि यह भी अपने स्थान पर एक महत्वपूर्ण बात या विषय है। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 36 समाप्त होता है और इस अध्याय में हमने विशेषकर एसाव के वंश के बारे में देखा और एदोम राष्ट्र के बारे में सीखा है, अर्थात हमें मालूम हो गया है कि एसाव का जीवन किस प्रकार का था। मित्रों, मैं आपको पुनः बता दूं कि उसने कनानी स्त्रियां ब्याह ली थी जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। तब उसने फिर से इश्माएल की पुत्री को ब्याह लिया और यह भी गलत था क्योंकि परमेश्वर एक से अधिक विवाह व अंतर जातीय विवाह की स्वीकृति नहीं देते हैं। एसाव ने वही काम किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। वह पूर्ण रीति से भौतिक और दैहिक बातों के पीछे था। उसने अपने आत्मिक जीवन की जरा भी चिंता नहीं की। यही कारण था कि उसने अपने पहलौठेपन के अधिकार को भी थोड़ी सी लाल दाल के लिए याकूब को अर्थात अपने छोटे भाई को बेच दिया। उस समय पहलौठे का मतलब होता था कि वह पिता के बाद घर का स्वामी या उत्तराधिकारी होगा, अर्थात उसका कार्यभार संभालेगा। लेकिन एसाव ने इस अधिकार को उचित नहीं समझा और अपने भूख को मिटाने के लिए उसने हमेशा के लिए पहलौठेपन के अधिकार को खो दिया। आगे हम देखते हैं कि उसकी आशीष भी उससे छीन ली गई और तब उसने अपना रूप दिखाना आरंभ कर दिया। उसने उन स्त्रियों को ब्याह लिया जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था। इतना ही नहीं, वह अपने भाई याकूब को भी मार डालना चाहता था ताकि पहलौठे का अधिकार फिर से प्राप्त कर ले, और इसी कारण से याकूब को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा ताकि वह जीवित रहे। मित्रों, हम यह भी देखते हैं कि एसाव पहाड़ों और पर्वतों पर रहने के लिए चला गया और यहाँ उसने नगर और जातियां बसाए। वह अपने भाइयों से हमेशा घृणा करता रहा, अर्थात जब भी इसराइल मुसीबत में पड़ा तो एदोमी लोग मदद करने के लिए नहीं आए परंतु उनके शत्रु के साथ मिलकर इसराइलियों को लूटा और समय समय पर उन्हें परेशान भी किया। मित्रों, आप देखेंगे कि एदोमी लोग बहुत ही ज्यादा घमंड से भर गए। तब परमेश्वर उनके घमंड को नाश करने के बारे में भविष्यवक्ता ओबद्याह की पुस्तक में उन्हें चेतावनी देते हैं कि वह उन्हें नाश करेंगे। इस प्रकार से एसाव अर्थात एदोमी जाति का पूरा चरित्र हमारे सामने रख दिया गया है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि घमंड मनुष्य को संकट में डाल देता है, यहाँ तक कि मृत्यु के चौखट में भी खड़ा कर देता है। हम बाइबल में लूसीफर अर्थात शैतान के बारे में जानते हैं, जो परमेश्वर के सामने उपस्थित रहने वाला एक स्वर्गदूत था, लेकिन उसने घमंड किया और वह वहां से पृथ्वी पर गिरा दिया गया, जिसे आज हम लोग शैतान कहते हैं। मित्रों, आज हम में से कई लोग घमंड की बीमारी से ग्रसित हैं और यही कारण है कि हम परमेश्वर की निकटता में नहीं आ पा रहे हैं। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 51 उसके 17 पद में कहता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए हृदय को तुच्छ नहीं जानता है। जी हाँ, जब हम परमेश्वर के सामने नम्र दीन और टूटे मन से आते हैं तो वह हमें तुच्छ नहीं जानता है, अर्थात हमें तुच्छ नहीं समझते हैं परंतु स्वीकार करते हैं। मित्रों, आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबको नम्र और दीन बनाए ताकि हम उसके आशीषों को पा सकें। हम प्रार्थना करें। हमारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे सभी श्रोता भाई बहनों के लिए कि आप उनके जीवन को नम्र व दीन बनाएं, उन्हें अपने वचन में बढ़ाएं, उनकी हर एक कमजोरियों से उन्हें छुटकारा दें और अपनी असीम शांति व आशीष प्रदान करें। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।